कभी कभी ये ख्याल आता है ना कि जब हम किसी ऑटोमेटेड ट्रैफिक कैमरे के नीचे से गुजरते हैं तो उस मशीन को बस एक ही चीज समझ आती है, नियम।
हाँ बिल्कुल, उसके लिए सब ब्लैक एंड व्हाइट होता है।
एग्जैक्टली। अगर गाड़ी की स्पीड लिमिट क्रॉस हुई तो सीधा घर पर फाइन आ जाएगा। उस कैमरे को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि गाड़ी में शायद कोई पेशेंट हो या किसी को हार्ट अटैक आया हो और हॉस्पिटल पहुंचना जान बचाने के लिए जरूरी हो।
राइट, मशीन के लेवल पर तो ये लॉजिक ठीक है, नियम तोड़ा तो फाइन भरो।
सही कहा, पर जब इंसानी समाज, धर्म और राजनीति की बात आती है तो ये ब्लैक एंड व्हाइट नियम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। जिंदगी किसी एल्गोरिदम पर तो चलती नहीं।
और यही मुद्दा हमारी आज की इस चर्चा के बिल्कुल सेंटर में है। इस गहरे विश्लेषण में हम डॉक्टर क्रेग कीनर की मैथ्यू चैप्टर 12 से 14 पर की गई रिसर्च को देखने वाले हैं।
और नियत मतलब रूल्स वर्सेस इंटेंशंस, और एक छिपे हुए राज्य या हिडन किंगडम का जो टकराव दिखाया गया है वो सिर्फ पुरानी हिस्ट्री नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये पावर डायनामिक्स और ह्यूमन साइकोलॉजी की एक मास्टर क्लास है, एक ऐसा सिस्टम जो आज के मॉडर्न स्ट्रक्चर्स में भी उतना ही रेलेवेंट है।
तो चलिए सीधे पहले टकराव पर आते हैं। कहानी की शुरुआत एक ऐसी घटना से होती है जो देखने में बड़ी मामूली सी लगती है।
राइट, वो खेत वाला किस्सा है।
हाँ, जीसस के शिष्य यानी डिसाइपल्स एक खेत से गुजर रहे हैं। उन्हें भूख लगती है तो वो खेत से थोड़ा अनाज तोड़कर खा लेते हैं। अब लोगों को लगता है कि शायद उन्होंने चोरी की,
जबकि एक बहुत आम गलत फहमिया।
एग्जैक्टली। लेकिन उस वक्त के कानून के हिसाब से ग्लीनिंग यानी बचा हुआ अनाज तोड़ना गरीबों और मुसाफिरों के लिए पूरी तरह लीगल था। फारीसी लोग मतलब फैरिसीज, उन्हें इस बात पर गुस्सा नहीं आया कि अनाज तोड़ा। बवाल तो इस बात पर हुआ कि शिष्यों ने अनाज को अपने हाथों से मसला।
हाँ, और हाथ से मसलने को उस वक्त के स्ट्रिक्ट नियमों में खाना बनाना या थ्रेशिंग का दर्जा दे दिया गया था, और क्योंकि वो दिन साबत का था
यानी आराम का दिन।
राइट, आराम का दिन जिसमें कोई भी काम करना मना था, इसलिए उनका ये एक्ट अचानक से गैर कानूनी बन गया। हम यहाँ देख सकते हैं कि कैसे एक रिजिड नियम इंसानी जरूरत जैसे भूख पर हावी हो रहा है।
ये तो वही बात हो गई कि किसी को हार्ट अटैक आया हो और किसी मॉडर्न हाउसिंग सोसाइटी के एचओए वाले एम्बुलेंस को इसलिए सोसाइटी में आने से रोक रहे क्योंकि एम्बुलेंस के टायरों से उनकी घास खराब हो जाएगी।
हाँ, या लिफ्ट गंदी हो जाएगी। प्रायोरिटी ही पूरी तरह से उल्टी हो चुकी थी उस वक्त।
पर क्या नियम वाकई इतने स्ट्रिक्ट थे उस वक्त?
इसको समझने के लिए हमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देखना होगा। उस दौर में फरीसियों से भी ज्यादा एक्सट्रीम लोग मौजूद थे जिन्हें एसीन्स कहा जाता था। ये लोग इतने कट्टर थे कि सैबथ के दिन शौच मतलब डेफिकेट जाने तक की इजाजत नहीं देते थे।
वेट, सीरियसली? शौच जाना भी मना था?
सही में। और अगर उनका कोई जानवर किसी गड्ढे में गिर जाए तो एसीन्स उस जानवर को वहां मरने देते थे, बाहर निकालते नहीं थे, क्योंकि अगर निकालेंगे तो वो काम कहलाएगा।
ओ वाओ, ये तो अलग ही लेवल की कट्टरता है।
बिल्कुल। इनके मुकाबले फरीसी खुद को बड़ा प्रैक्टिकल मानते थे। वो अपने जानवर को गड्ढे से निकालते थे, उसे पानी पिलाते थे, लेकिन जब बात आई कि जीसस सैबत के दिन एक इंसान को ठीक कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, तो यही फरीसी भड़क गए।
ये तो क्लियर हिपोक्रेसी है, इंसान से ज्यादा वैल्यू जानवर की हो गई।
राइट। और जीसस ने उन्हें उन्हीं के कानून और हिस्ट्री से जवाब दिया। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे किंग डेविड ने भूख लगने पर मंदिर की पवित्र रोटी खाई थी जो नियम के हिसाब से सिर्फ पुजारियों के लिए थी।
हाँ, और उन्होंने ये भी लॉजिक दिया कि मंदिर के पुजारी तो साबित के दिन भी काम करते हैं, तो क्या वो पापी हो गए?
एग्जैक्टली। पर सबसे बड़ी लाइन जो उन्होंने बोली वो प्रॉफिट होजिया का एक कोट था, गॉड वॉन्ट्स मर्सी नॉट सैक्रिफाइस, यानी ईश्वर को दया चाहिए, कर्मकांड नहीं।
लेकिन एक मिनट, मैं एक चीज सोच रही थी यहाँ। रिसर्च बताती है कि फारसी आम तौर पर काफी लीनियंट यानी नरम माने जाते थे। उनके सिस्टम में किसी को मौत की सजा देना लगभग नामुमकिन जैसा था ना?
हाँ, पेपर पर तो ऐसा ही था।
मतलब अगर किसी आदमी के हाथ में खून से सना चाकू हो और सामने किसी की लाश पड़ी हो, तब भी बिना दो चश्मदीद गवाहों के उसको मौत की सजा नहीं मिलती थी। तो अगर ये लोग इतने लीनियंट थे और जीसस ने तो किसी को हाथ तक नहीं लगाया, बस बीमार को कहा हाथ आगे बढ़ाओ और वो ठीक हो गया, तो फरीसी इतने आक्रामक क्यों हो गए? उन्होंने मारने की साजिश क्यों शुरू कर दी?
देखिए, जब सत्ता और सामाजिक कंट्रोल पर आंच आती है ना, तो बड़े से बड़े लीनियंट सिस्टम भी एक सेकंड में डिक्टेटर बन जाते हैं। थ्योरी में वो जरूर लीनियंट थे, पर जीसस जो कर रहे थे वो फरीसियों के अथॉरिटी स्ट्रक्चर पर एक डायरेक्ट अटैक था।
अच्छा, मतलब उनकी पावर छिन रही थी।
बिल्कुल। जीसस भीड़ को एक नई आजादी दिखा रहे थे जो इन धार्मिक नेताओं के कंट्रोल से बाहर थी। जब लोगों की सदियों पुरानी परंपरा और उनके रुतबे को कोई ओपन चैलेंज करता है, तब प्रिंसिपल्स और एक्चुअल बिहेवियर का फर्क सामने आ जाता है।
तो ये कानून का मुद्दा बचा ही नहीं था, ये सर्वाइवल का मुद्दा बन गया। जब नियम से बात नहीं बनी, तब फारसियों ने सीधा कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दिया।
राइट, उन्होंने नया तरीका अपनाया।
उन्होंने अटैक का डायरेक्शन चेंज किया और आरोप लगाया कि जीसस बीलजेबुल यानी शैतान की मदद से बुरी आत्माओं को भगाते हैं। उन्होंने डायरेक्टली जादू टोना यानी सॉसरी का आरोप लगा दिया।
और उस वक्त के ज्यूइश लॉ में जादू टोना करना सीधा मौत की सजा था, और ये आरोप कम्प्लीटली हवा में भी नहीं था। उस जमाने के पुराने जादू के रिकॉर्ड्स, जिन्हें मैजिकल पेपीरी कहा जाता है, वो दिखाते हैं कि लोग बुरी आत्माओं को निकालने के लिए सच में दूसरी ज्यादा ताकतवर बुरी आत्माओं को बुलाते थे।
तो फारसियों ने इस टेक्निकलिटी का फायदा उठाकर उन्हें फंसाने की कोशिश की, पर जीसस का लॉजिक इतना शार्प था कि उन्होंने इस आर्ग्यूमेंट को वहीं ढेर कर दिया।
हाँ, उनके तीन मेन पॉइंट्स थे। पहला, अगर शैतान खुद अपने ही लोगों को बाहर निकाल रहा है तो उसका अपना घर कैसे बचेगा, वो खुद अपने खिलाफ क्यों लड़ेगा।
सही बात है। और दूसरा, उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किया कि तुम्हारे अपने फॉलोअर्स जो आत्माएं भगाते हैं वो किसकी मदद से करते हैं, और ये यहाँ की हिस्टोरिकल डिटेल्स सच में बड़ी फनी है।
बिल्कुल, उस वक्त के आम एग्जॉसिस्ट बदबूदार चीजें, जादुई अंगूठियां और अजीब अजीब मंत्रों का इस्तेमाल करते थे, जबकि जीसस बिना किसी ड्रामेटिक्स के सिर्फ एक आदेश देकर आत्माओं को निकाल देते थे।
और तीसरा और सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया कि ये ईश्वर की उंगली यानी फिंगर ऑफ गॉड या पवित्र आत्मा का काम है, और यहां पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जिसने सदियों से लोगों को डरा रखा है।
आप ब्लास्फेमी अगेंस्ट द होली स्पिरिट की बात कर रही हैं?
हाँ, पवित्र आत्मा की निंदा। आज भी लोग इस बात से डरते हैं कि उनसे गलती से कोई ऐसा पाप ना हो जाए जो कभी माफ ना हो, जिसे अनफॉरगिवेबल सिन कहते हैं। तो क्या ये डर वैलिड है? असल में ये अनफॉरगिवेबल सिन है क्या?
देखिए, लोगों का डरना नेचुरल है, पर डॉक्टर कीनर की रिसर्च इसको बिल्कुल अलग तरीके से एक्सप्लेन करती है। ये कोई स्लिप ऑफ द टंग नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि गुस्से में कुछ गलत निकल गया और हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए।
तो फिर ये एक्चुअली है क्या?
ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। ये दिल का उस हद तक कठोर हो जाना है जहां इंसान सच्चाई सुनने के काबिल ही ना रहे। जब कोई सबसे स्पष्ट और अच्छे चमत्कार को देखकर भी जानबूझकर उसे शैतान का काम डिक्लेयर कर दे सिर्फ अपनी ईगो और पावर बचाने के लिए, तब वो पाप होता है।
मतलब सच्चाई को देखकर भी अंधा बन जाना।
एग्जैक्टली। अगर कोई आज अपने किए पर गिल्ट फील कर रहा है या पछतावा करना चाहता है, तो इसका सीधा मतलब है कि उसने ये पाप नहीं किया है, क्योंकि जो ये पाप करता है उसकी कॉन्शियंस या जमीर पूरी तरह मर चुकी होती है।
राइट, इसका मतलब जीसस उन्हें चेतावनी दे रहे थे कि तुम लोग एक ऐसे अंधे रास्ते पर जा रहे हो जहां से आगे चलकर तुम खुद वापस नहीं आना चाहोगे।
बिल्कुल। और इसके बाद जीसस अपनी अथॉरिटी का समझाने के लिए एक जबरदस्त एनालॉजी देते हैं, ताकतवर आदमी को बांधना यानी बाइंडिंग द स्ट्रांग मैन।
हाँ, वो कहते हैं कि अगर किसी माफिया बॉस या ताकतवर आदमी का घर लूटना है तो आपको पहले उस बॉस को फिजिकली बांधना पड़ेगा, तभी आप उसका सामान ले जा सकते हैं।
और अगर हम मैथ्यू चैप्टर 4 के हिस्ट्री देखें तो जीसस पहले ही परीक्षा यानी टेम्पटेशन के दौरान शैतान को हरा चुके थे, उसे बांध चुके थे।
इसीलिए अब वो लोगों को शैतान के कब्जे से आजाद कर पा रहे थे। पर इस सब टकराव के बाद ना जीसस ने अपनी सिखाने की स्ट्रेटजी स्विच कर दी। उन्होंने पैराबल्स यानी कहानियों का इस्तेमाल शुरू किया।
हाँ, क्योंकि फरीसियों और भीड़ के दिल इतने कठोर हो चुके थे कि सीधी बात उनके दिमाग में घुसी नहीं रही थी, तो उन्होंने ऐसी कहानियां सुनानी शुरू की जो सच्चाई को ओपनली दिखाती भी थी और एक ही वक्त पे छुपाती भी थी।
पर एक सेकंड के लिए यहां सोचिए, अगर कोई दुनिया को एक नया रेवोल्यूशनरी मैसेज देना चाहता है तो वो जानबूझकर ऐसी कहानियां क्यों सुनाएगा जो आधी से ज्यादा भीड़ के सर के ऊपर से निकल जाए।
सुनने में अजीब लगता है ना?
हाँ, मॉडर्न मार्केटिंग के हिसाब से तो ये टेरिबल स्ट्रेटेजी है। मैसेज तो क्लियर और सिंपल होना चाहिए था।
मॉडर्न मार्केटिंग के हिसाब से जरूर टेरिबल होगी, पर जीसस का मकसद वायरल होना नहीं था। वो फॉलोअर्स नहीं ढूंढ रहे थे, वो शिष्य ढूंढ रहे थे। ये कहानियां एक्चुअली एक फिल्टर का काम कर रही थीं।
एक फिल्टर मतलब कमिटमेंट चेक करने के लिए।
एग्जैक्टली। जो भीड़ सिर्फ तमाशा या चमत्कार देखने आई थी उनके लिए ये एक अजीब सी कहानी थी और वो चले जाते थे, लेकिन जो सच में सीखना चाहते थे वो भीड़ के जाने के बाद रुकते थे, सवाल पूछते थे
और फिर अकेले में उन्हें इन कहानियों का राज समझाया जाता था।
हाँ, ये एक तरह से एक एक्सक्लूसिव स्टडी ग्रुप बन गया था जहाँ एंट्री सिर्फ सच्ची इंटेंशन वालों को ही मिलती थी।
और हमें लगता है कि पैराबल्स का मतलब बस बच्चों वाली नैतिक कहानियां हैं, लेकिन उस वक्त की मशाल यानी पैराबल्स में रिडल्स, ताने और नीति वचन सब शामिल थे।
और यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट भी है। उस दौर के पढ़े लिखे रैबाइज और जीसस की कहानियों के बीच बहुत फर्क था। रैबाइज आमतौर पर राजा महाराजाओं की कहानियां सुनाते थे जो सोसाइटी के एस्टैब्लिश्ड रूल्स को सपोर्ट करती थीं,
जबकि जीसस की कहानियां सीधे किसानों, खेतों और आम लोगों से जुड़ी होती थीं। और सबसे बड़ी बात, ये कहानियां परंपराओं को तोड़ने वाली यानी हाईली सबवर्सिव होती थीं।
बिल्कुल। और इन कहानियों को समझने के तरीके पर स्कॉलर्स में काफी लंबा डिबेट भी रहा है। एक टाइम था जब लोग मानते थे कि एक पैराबल का सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंट्रल मैसेज होता है।
अच्छा, सिर्फ एक लेसन?
हाँ, पर बाद में जब रिसर्चर्स ने प्राचीन यहूदी कहानियों का गहरा अध्ययन किया तो उन्हें समझ आया कि इन कहानियों का स्टाइल मल्टी लेयर्ड होता था। एक ही कहानी में अलग अलग कैरेक्टर्स और एलिमेंट्स के कई सिंबॉलिक मतलब होते थे।
इस बात को क्लियर करने के लिए हम उस प्राचीन यहूदी कहानी का उदाहरण ले सकते हैं। एक राजा था जिसे अपने सेब के बगीचे के लिए पहरेदार चाहिए थे। उसने सोचा, एक अंधे और एक लंगड़े आदमी को काम पर रखता हूँ।
लॉजिक ये था कि लंगड़ा आदमी चल नहीं पाएगा और अंधा देख नहीं पाएगा तो ये चोरी तो कभी नहीं कर पाएंगे।
लेकिन उन दोनों ने मिलकर एक मास्टर प्लान बना लिया। लंगड़ा आदमी अंधे के कंधे पर बैठ गया, लंगड़े ने डायरेक्शन दी और अंधे ने पैरों का इस्तेमाल किया और सारे सेब चुरा लिए।
और फैसले के दिन जब राजा आया तो दोनों मुकर गए। अंधे ने मासूमियत से कहा, मेरे पास आंखें कहाँ हैं जो मैं सेब देखूंगा? और लंगड़े ने कहा, मेरे पास पैर कहाँ हैं जो मैं पेड़ तक जाऊंगा?
पर राजा भी शातिर था। उसने उस लंगड़े को वापस अंधे के कंधे पर बिठाया, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने चोरी की थी, और फिर उन दोनों को एक साथ सजा दी।
ये कहानी सुनने में बड़ी मजेदार है, पर इसका थियोलॉजिकल मतलब बिल्कुल मल्टीलेयर्ड है। ये समझाती है कि फैसले के दिन यानी जजमेंट डे पर ईश्वर सिर्फ आत्मा जिसे अंधा माना गया या सिर्फ शरीर जिसे लंगड़ा माना गया उन्हें अलग अलग सजा नहीं देगा।
उन्हें एक साथ जियाकार एक साथ सजा दी जाएगी क्योंकि उन्होंने पाप एक यूनिट की तरह किया था। तो ये क्लियर प्रूफ है कि इन कहानियों के मल्टीपल मीनिंग्स होते थे।
सही कहा।
तो अब हम उन खास पैराबल्स पर फोकस करते हैं जो इस रहस्यमयी राज्य या हिडन किंगडम को एक्सप्लेन करती थीं। सबसे पहली कहानी खोट भरी घास या डार्नल की कहानी। इसने मुझे स्पेसिफिकली बहुत हैरान किया।
डार्नल, जिसे बॉटनी में लोलियम कोमेंटम कहते हैं, वो शुरुआत में बिल्कुल गेहूं जैसी दिखती है। इन दोनों को तब तक अलग नहीं पहचाना जा सकता जब तक इनमें बालियां नहीं आ जाती।
और कहानी में होता ये है कि दुश्मन रात के अंधेरे में आकर गेहूं के खेत में डार्नल के बीज बो जाता है।
पहले तो मुझे लगा ये सिर्फ एक मेटा स्टोरी है, पर हिस्ट्री बताती है कि उस जमाने में खेती को लेकर एक्चुअली ऐसी खतरनाक दुश्मनी होती थी।
हाँ, ये किसी मॉडर्न कॉर्पोरेट एस्पियोनाज या सैबोटाज से कम नहीं था। रोमन एम्पायर को तो इस तरह के एग्रीकल्चरल सैबोटाज के खिलाफ स्ट्रिक्टली कानून तक बनाने पड़े थे।
वाह।
और कहानी में किसान के नौकर पूछते हैं कि क्या हम अभी इस खराब घास को उखाड़ दें, तो किसान कहता है, नहीं, अंत तक रुको वरना गेहूं के पौधे भी उखड़ जाएंगे।
ये पैराबल हिडन किंगडम की एक बहुत ही रियलिस्टिक पिक्चर पेंट करती है। उस वक्त काफी लोगों को लगता था कि मसीहा आएगा और एक रात में रोमन एम्पायर का खात्मा करके दुनिया से सारी बुराई मिटा देगा।
पर जीसस समझा रहे थे कि इस दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ उगेंगे।
एग्जैक्टली। उनकी रूट्स आपस में इस तरह उलझी हुई हैं कि ईश्वर अभी तुरंत आकर सब कुछ क्लियर आउट नहीं करेगा। असली अलगाव और फैसला अंत में होगा। ये किंगडम अभी ग्रोथ फेज में है, जजमेंट फेज में नहीं।
इसी तरह इस किंगडम की छोटी और छुपी हुई शुरुआत को समझाने के लिए मस्टर्ड सीड यानी राई का दाना और यीस्ट मतलब खमीर का उदाहरण दिया गया। मस्टर्ड सीड उस इलाके में बोया जाने वाला सबसे छोटा बीज था जो बढ़कर एक बड़ा पेड़ बन जाता है।
और यीस्ट वाली कहानी की डिटेल तो सच में दिमाग घुमाने वाली है।
हाँ, कहानी कहती है कि एक औरत ने 50 पाउंड आटे में खमीर छुपाया। अब सुनने में लगता है ठीक है, आटा ही तो है, पर हिस्टोरिकल मेजर के हिसाब से 50 पाउंड आटे का मतलब समझते हैं?
लगभग 100 लोगों के खाने के बराबर।
बिल्कुल, ये रोजमर्रा का खाना नहीं, एक पूरी दावत का साइज है।
और यहाँ पॉइंट यीस्ट का बुरा होना नहीं है, बल्कि उसका परवेसिव नेचर है। कैसे एक बिल्कुल छोटी सी ना दिखने वाली चीज धीरे धीरे एक इतने मैसिव आटे के ढेर को अंदर ही अंदर ट्रांसफॉर्म कर देती है,
उसे पूरी तरह बदल कर रख देती है।
हाँ, हिडन किंगडम भी बिल्कुल ऐसे ही शांति से बिना किसी शोर के पूरे समाज में फैलता है।
और जब किसी को इस छुपी हुई ताकत की असलियत पता चलती है तो उसका रिएक्शन क्या होता है? यहाँ आते हैं ट्रेजर और पर्ल, यानी खजाना और मोती के पैरेबल्स। एक आदमी किसी और के खेत में काम कर रहा है, अचानक उसे खेत में गढ़ा हुआ एक खजाना मिल जाता है,
तो वो वापस उस पर मिट्टी डालता है और जाकर अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर उस खेत को खरीद लेता है।
और उस वक्त के प्रॉपर्टी कानून में एक जबरदस्त लीगल लूपहोल भी था। जब कोई जमीन खरीदता है तो जमीन के अंदर निकलने वाला सब कुछ नेचुरली उसका हो जाता है।
राइट।
तो उसने लीगल तरीके से अपना सब कुछ दाव पर लगाकर वो खजाना अपना लिया।
राइट। और दूसरी तरफ एक मर्चेंट है जो दुनिया के सबसे महंगे मोती की तलाश में है। उस जमाने में रेड सी और पर्शियन गल्फ से आने वाले पर्ल्स लग्जरी की हाइट थे।
और जब उससे वो एक परफेक्ट मोती मिलता है तो वो भी अपना सब कुछ बेच देता है।
इन दोनों कहानियों का कोर मैसेज एक ही है, ईश्वर के राज्य की अथॉरिटी जब किसी को मिलती है तो वो उसका सब कुछ मांगती है। इसकी कीमत आधी अधूरी डिवोशन नहीं हो सकती।
उस खजाने और मोती के सामने इन लोगों के पास जो कुछ भी था उसकी कोई वैल्यू ही नहीं बची थी।
मतलब ये किंगडम टोटली हिडन है, पर इसका असर और इसकी कॉस्ट एब्सोल्यूट है।
बिल्कुल। अब यहाँ आकर नैरेटिव एक ऐसा डार्क टर्न लेता है जो पिछली सारी शांति और हिडन थीम्स को एक जबरदस्त ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट देता है। हम बात कर रहे हैं टू बैंक्वेट्स, यानी दो दावतों की।
एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट।
एक तरफ जीसस का राज्य है जहाँ वो एक शांत जगह पर 5,000 भूखे लोगों को मुफ्त में और बिना किसी तमाशे के खाना खिलाते हैं, और दूसरी तरफ है दुनिया की ताकत हेरोद एंटिपस की दावत।
एंटिपस का हिस्सा तो वैसे किसी ड्रामा से कम नहीं है।
हाँ, इसका सेक्शन पढ़ते हुए लगता है जैसे हम किसी डार्क पॉलिटिकल थ्रिलर या गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा कुछ देख रहे हैं।
सही बात है, एंटिपस खुद को अपने दोस्तों के बीच राजा बुलवाना पसंद करता था, पर हिस्ट्री कहती है वो सिर्फ एक टेट्राज था, यानी एक छोटा प्रोविंशियल गवर्नर। असली अथॉरिटी तो रोम के एम्परर के हाथ में थी, और एंटिपस का परिवार अपने स्कैंडल्स और इमोरैलिटी के लिए बदनाम था।
उसने फैसला किया कि वो अपने ही भाई की पत्नी हेरोडियस से शादी करेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो ऑलरेडी शादीशुदा था। उसकी पहली पत्नी नबटेनियन एम्पायर के राजा अरेतस फोर की बेटी थी। जब एंटिपस ने उसे डिवोर्स देने का प्लान बनाया तो वो गुस्से में अपने देश भाग गई।
और जाहिर है किसी ताकतवर पड़ोसी राजा की बेटी की बेइज्जती का नतीजा क्या होगा? सीधा युद्ध। राजा अरेतस ने एंटिपस पर हमला कर दिया, और उस युद्ध में एंटिपस की इतनी भयानक हार हुई कि अगर रोम अपनी सेना भेजकर उसको ना बचाता तो उसकी पूरी रियासत तबाह हो चुकी होती।
और इस हाई टेंशन पॉलिटिकल माहौल में एंट्री होती है जॉन द बैप्टिस्ट की। जॉन ने एंटिपस की इस नई और अनैतिक शादी का खुलेआम विरोध करना शुरू कर दिया।
और सोचिए, एंटिपस की आधी जनता नबटेनियन थी। जॉन का यह विरोध सिर्फ एक नैतिक भाषण में ही बचा था, बल्कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल खतरा बन गया था कि कहीं जनता बगावत ना कर दे।
इसीलिए एंटिपस ने उस आवाज को दबाने के लिए जॉन को मचरूस के किले यानी फोर्ट्रेस के एक अंधेरे अंडरग्राउंड डंजन में कैद कर दिया।
और इसी किले में होती है वो बदनाम बर्थडे दावत। हेरोडियन परिवार की पार्टी अपनी एक्स्ट्रावेलेंस के लिए तो जानी ही जाती थी। इस दावत में पुरुषों और महिलाओं के हॉल अलग अलग थे, पर हेरोडियस ने अपनी जवान बेटी सलोमे को मर्दों के हॉल में नाचने भेज दिया।
और एंटिपस नशे में इतना धुत और उस नाच से इतना खुश हुआ कि उसने एक पब्लिक वादा कर डाला, मांगो जो मांगना है, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य तक दे दूंगा।
ये लाइन सुनने में बड़ी ग्रैंड लगती है। एंटिपस असल में प्राचीन पर्शियन राजा ज़र्क्सीज़ की नकल करने की कोशिश कर रहा था जिसने ऐसा ही प्रॉमिस किया था।
पर आयरनी तो देखिए, एंटिपस के पास बांटने के लिए कोई आधा राज्य था ही नहीं।
बिल्कुल नहीं, रोमन एम्पायर के सामने उसकी औकात कुछ थी नहीं। वो बस अपने वीआईपी दोस्तों के सामने माचो और ताकतवर दिखने का दिखावा कर रहा था।
सलोमे ने अपनी माँ हेरोडियस से पूछा कि वो क्या मांगे, और उस माँ ने इस मौके का फायदा उठाया। सलोमे वापस आई और बोली, मुझे अभी के अभी एक थाली पर जॉन द बैप्टिस्ट का सर चाहिए।
एंटिपस अंदर से कम्प्लीटली डरपोक था, वो घबरा गया। वो जानता था कि जॉन एक रिलीजियस नेता है, पर उसकी मर्दों वाली ईगो और अपने दोस्तों के सामने इज्जत का डर उसकी जमीर पर हावी हो गया।
उसने तुरंत ऑर्डर दिया और किले के अंधेरे डंजन में जॉन का सर काट दिया गया। रोमन लॉ में इस तरह डीकैपिटेशन को मर्सिफुल एग्जीक्यूशन माना जाता था, क्योंकि इसमें क्रूसिफिक्शन जैसी लंबी तड़प नहीं होती थी, पर फिर भी ये उस खूनी दावत का एक टेरिफाइंग एंड था।
तो एक तरफ जीसस की दावत है जो जीवन और पेट भरने को दर्शाती है, और दूसरी तरफ एक ऐसा होस्ट है जो दिखावे, ईगो और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के चक्कर में मौत और बर्बादी परोस रहा है।
और देखिए हिस्ट्री कैसे अपना कर्मा वापस देती है। हेरोडियस और एंटिपास को अपनी सत्ता की इतनी भूख थी, लेकिन कुछ टाइम बाद हेरोडियस का अपना भाई अग्रिप्पा वन सच में रोम की कृपा से राजा बन गया।
और ईर्ष्या यानी जलसी ने हेरोडियस को पागल कर दिया। उसने एंटिपास पर प्रेशर डाला कि तुम भी रोम जाओ और एम्परर कलीगिला से राजा का टाइटल लेकर आओ।
और यही उनका सबसे बड़ा डाउनफॉल साबित हुआ है ना?
बिल्कुल, कलीगिला उनकी इस पॉलिटिकल ओवर कॉन्फिडेंस से इतना गुस्सा हुआ कि टाइटल देना तो दूर, उसने इन दोनों को उनकी बची खुची जमीन से भी उखाड़ फेंका और इन्हें गॉल देश यानी मॉडर्न डे फ्रांस में हमेशा के लिए बैनिश कर दिया, देश निकाला दे दिया।
जिन्होंने पावर और टाइटल के लिए दुनिया भर का शोर मचाया और अपनों की जाने ली, उन्होंने एंड में अपना सब कुछ खो दिया। जबकि पैराबल्स का वो सिंपल किसान जिसने बिना शोर के खुशी खुशी सब बेच दिया था, उसने सच्चा खजाना पा लिया।
सही बात है, ये कॉन्ट्रास्ट वाकई सोचने पर मजबूर करता है।
तो चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं। हमने सफर शुरू किया था सैबत के दिन तोड़े गए अनाज के एक मामूली से बवाल से। फिर हमने देखे बेल्जेबुल के जादू टोने वाले खतरनाक आरोप और माफियाज जैसी लॉजिक।
उसके बाद पैराबल्स की वो कोड लैंग्वेज जो सिर्फ उनके लिए थी जो सच में सीखना चाहते थे, और अंधे और लंगड़े आदमी की वो स्कीम,
और आखिर में मच्छरस किले में गिरे एक सिर और एंटिपिस के अहंकार के अंत तक। ये सारी चर्चा हमें एक बहुत ही क्लियर इमेज देती है, सच्ची पावर, रियल किंगडम वहां नहीं है जहां शोर है, जहां वायलेंस है, ये जहां खुद को राजा बुलवाने की जिद है। सच्ची ताकत उस आटे में मिले यीस्ट जैसी है जो शांति से पूरे इकोसिस्टम को बदल देती है।
बिल्कुल।
एक आखिरी विचार जिसके साथ हम इस चर्चा को खत्म कर सकते हैं। आजकल हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो बिल्कुल एंटिपास की दावत जैसी लगती है, एक अटेंशन इकोनॉमी जहां हर चीज व्यूज, लाइक्स, शोर शराबे और मैं कितना बड़ा हूं इस दिखावे पर टिकी है।
और इस शोर में असली चीजें दब जाती हैं।
राइट। तो क्या इस शोर में इंसान उस शांत छुपी हुई सच्चाई को पहचानने की कैपेसिटी खो चुका है? वो खजाना जो बाहर से नहीं दिखता पर जिसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाना कंप्लीटली वर्थ इट है। इस विषय पर अपने विचार जरूर कीजिए, और याद रखिए सबसे बड़ा और परमानेंट असर अक्सर सबसे शांत जगहों से ही आता है।